नमस्कार भारत, तारीख 26 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को नहीं दिया काउंसलर एक्सेस, पर मां और पत्नी से मुलाकात जरूर कराई। आखिर हासिल क्या करना चाहता है पाकिस्तान?
पाकिस्तान को ज्यादा ही हासिल होगा कि उसको जिंदा रहे, अच्छा रहे और बार बार दुनिया को भी और दिल्ली को भी याद करवाए कि आपने ऐसे बंदा बलूचिस्तान में भेजा था और उसने ये काम किया है।
विजय रूपाणी आज संभालेंगे दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद। मिलिए यूएई में रह रहे ऐसे भारतीय से जो सजायाफ्ता मुजरिमों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं।
तकरीबन 18 केस जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसमें 93 जो बच्चे ऐसे हैं तो उनको फांसी भी माफ़ होगी। और ये सब लोग जो है वो कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हैदराबाद से, 3 बच्चे थे।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप राय से। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव और उनके परिजनों से मुलाकात पर पाकिस्तान ने कहा है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात नहीं है। कल जाधव की पत्नी और उनकी मां उनसे मिलने इस्लामाबाद पहुंचे। इस दौरान जाधव शीशे के पीछे दिखे और सामने बैठे परिजनों से उनकी फोन पर बातचीत हुई। जाधव ने एक वीडियो में मुलाकात के लिए पाकिस्तानी सरकार को शुक्रिया कहा है। रूस के चुनाव आयोग ने विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी को राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने पर पाबंदी लगा दी है। आयोग ने कहा है कि नावाल्नी के खिलाफ आपराधिक सजा के कारण उनकी उम्मीदवारी अवैध हो गई है। नावाल्नी के उस दावे को भी आयोग ने गलत बताया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उम्मीदवारी के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। यहां मार्च में आए आम चुनाव होने जा रहा है। नावाल्नी ने चुनाव बहिष्कार की अपील की है।
Мы понимали, что такое возможно, и у нас есть ясный, четкий план. И я сейчас обращаюсь ко всем.
जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। इसमें बस एकमात्र उम्मीदवार है और वो खुद हैं पुतिन। उन्होंने खुद ही अपने लिए अपने आप को चुना है। इससे उन्हें जरा भी खतरा नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसा ही होने वाला था। ये थे एलेक्सी नावाल्नी के शब्द। क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने मध्य पूर्व और अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच शांति का आह्वान किया है। वेटिकन सिटी में अपने पारंपरिक क्रिसमस भाषण के दौरान उन्होंने इसराइल और फलस्तीनी लोगों से शांतिपूर्ण द्विराष्ट्र समाधान की अपील की। अमेरिका की ओर से यरूशलम को इसराइल की राजधानी की मान्यता दिए जाने के बाद तनाव बढ़ गया है। पिछली बार के मुकाबले बेथलहम में बहुत कम लोग पहुंचे थे।
On this festive day, let us ask the Lord for peace for Jerusalem and for all the Holy Land.
इस पर्व पर आइए हम यरूशलम और पूरे पवित्र स्थल के लिए शांति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि दोनों पक्षों के बीच संवाद बहाल हो और बातचीत समाधान तक पहुंचे, ताकि दो राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम हो। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मॉस्को में एक बस के फुटपाथ पर चढ़ जाने से 4 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर ने जांचकर्ताओं को बताया कि बस का ब्रेक फेल हो गया था। टेलीविजन तस्वीरों में दिख रहा है कि बस एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन के सबवे की सीढ़ियों पर क्षतिग्रस्त खड़ी है। पुलिस ने किसी चरमपंथी हमले से इसके संबंध होने से इनकार किया है। एप्पल ने स्वीकार किया है कि उसने पुराने आईफोन्स की क्षमता को जानबूझकर धीमा किया था। इसके बाद इसराइल में उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। निराश उपभोक्ताओं ने कहा है कि कंपनी ने नए अपडेट देते समय इस बात को छुपाया कि इससे फोन की स्पीड धीमी हो सकती है। कंपनी के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि एप्पल कंपनी ये जानती थी कि जब लोगों का फोन धीमा हो जाएगा तो वे नए आईफोन खरीदेंगे। कनाडा ने वेनेजुएला के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। इससे पहले वेनेजुएला ने घरेलू मामलों में दखल का आरोप लगाते हुए कनाडा और ब्राजील के राजदूतों को देश से निष्कासित कर दिया था। फिलीपींस में भारी तबाही मचाने के बाद टेम्बन तूफान ने अपना रुख वियतनाम की ओर कर लिया है। यहां लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में यहां 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तूफान से फिलीपींस में 240 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के कराची शहर में मार्च निकाल रहे शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर है, जबकि 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कल इस्लामाबाद में अपनी पत्नी व मां से बात करने का मौका मिला। इस मुलाकात की जो तस्वीरें जारी हुईं उसमें जाधव शीशे की दीवार के सामने अपनी मां और पत्नी के सामने बैठे हुए दिखाई दिए। इस मुलाकात के बाद उनकी मां और पत्नी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण की मुलाकात उनके घर वालों से करवाकर पाकिस्तान ने अपने वायदे को पूरा किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा,
ये जी एक पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स किया गया है जी। वो हमने किसी मुकदमा जीतने के लिए ये मुलाकात नहीं कराई, ना इसका इम्पैक्ट आएगा। ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी जी, ने उनके साथ वादा किया था उसको अपहोल्ड किया है। आधे घंटे की मीटिंग का वादा था, करीबन 40 मिनट तक चली गई। कमांडर यादव ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग रिक्वेस्ट की कि जी इसको अगर 10 मिनट बढ़ा दिया जाए, उनकी मदर ने भी एग्री, तो हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया।
ये थे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल। जैसा कि आपको याद होगा कि ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चल रहा है। पाकिस्तान ने अब तक इस मामले में जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से इनकार किया है, पर इस मुलाकात से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसी नरमी बरतकर खुद को दुनिया की नज़रों में उदार दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही सवाल हमारे सहयोगी वात्सल राय ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर से किया।
सबसे पहले तो ये अचानक नहीं हुआ, एक पूरा प्रोसेस था। यादव को ये मौत की सजा दे के पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा, ये कोई इतना बड़ी दहशतगर्द सच नहीं है। जिस तरह के कसाब था, जिस तरह उसने वो पूरा मुंबई का एक दहशतगर्दी किया था, हालांकि इसने खुद एडमिट किया है कि मैंने दहशतगर्दी पाकिस्तान में किया है, तो इसको मौत दे के पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान को ज्यादा ही हासिल होगा कि इसको जिंदा रहे, अच्छा रहे, और बार बार दुनिया को भी और दिल्ली को भी याद करवाए कि आपने ऐसे बंदा बलूचिस्तान में भेजा था और उसने ये काम किया है। दूसरी ये था कि यादव ने खुद फरमाइश की थी कि मैं अपनी बेगम से मिलना चाहता हूँ, अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहाँ इस तरह हुआ है कि एक जासूस पकड़ा जाता है जो एडमिट करता है मैंने ये काम किए और फिर उसको आगे बात बढ़ाए। सबसे जरूरी जो हमको जहन में रखना चाहिए वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां भी बात उठी काउंसलर एक्सेस की। पाकिस्तान का ये कहना है कि काउंसलर एक्सेस में कैटेगरी में ये नहीं आता, ये कोई डिप्लोमेट नहीं है भारत सरकार का। कल रात ख्वाजा आसिफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा हो सकता है कि हम इनको काउंसलर एक्सेस भी दें।
पाकिस्तान लगातार पहले डिनाई करता रहा था, काउंसलर एक्सेस की बात को भी डिनाई करता रहा था। आज जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी इस बात को माना कि आगे दिया जा सकता है काउंसलर एक्सेस, तो इसके क्या संकेत आपको मिल रहे हैं?
पाकिस्तान में बहुत कॉन्फिडेंस है इस केस में लेके, यानी वो जो कहते हैं ना इतना बड़ा शिकार तो उनको कभी आज तक मिला नहीं। छोटे मोटे एजेंट यहाँ भी पकड़े जाते हैं, वहां भी पकड़े जाते हैं। आपको पकड़ने के लिए मैं आपको बैकग्राउंड दूं, कोई एक दिन में दो दिन में नहीं हुआ, ये कम से कम 2 साल से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इसके ऊपर नजर रखी हुई थी, उन्होंने मौका देख के इसको गिरफ्तार किया। भारत सरकार क्यों नहीं इसकी पेंशन बुक दिखाता कि भाई ये बिल्कुल रिटायर्ड हो गया, ताकि जाधव की जो केस है वो और मजबूत हो जाए। ये तो मदद करनी चाहिए मोदी सरकार को। ये जो दूसरा पासपोर्ट पे ये फिरता था मुसलमान नाम पटेल नाम लेके, ये क्या वजह है? उनको क्यों सरकार ने आपकी जो मिनिस्ट्री है जो इशू करती है पासपोर्ट नहीं दिया है? तो मेरे ख्याल में सवालात भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है।
पाकिस्तान ने ये कहा ये मुलाकात जो है वो केस जीतने के लिए नहीं है, ये एक इंसानी जज्बे के तहत मुलाकात कराई जा रही है, लेकिन क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि इसका रीजन यही है?
नहीं, दुनिया में हर देश जो है वो अपना कुछ पब्लिक रिलेशनिंग, कुछ अपने आप को दिखाने की, और ये बार बार पाकिस्तान कह रहा है आप ये ना सोचे कि कोई आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने क्या कि भारत में दुनिया में कहीं ये मिसाल नहीं है कि एक कैदी है दहशतगर्दी का, उस माना है कि मैं दहशतगर्द हूँ, मैं रॉ के लिए काम करता हूँ, और फिर भी उनको, तो मेरे ख्याल इसको पॉजिटिव ऐसे देखना चाहिए कि कम से कम मुलाकात हुई, बातचीत हुई।
इस मुलाकात के बाद क्या आपको कोई लगता है जो ताल्लुकात हैं बहुत ही तल्ख हैं, तो क्या उसमें कोई बेहतरी आने की कोई सूरत आप देखती हैं?
नहीं, पब्लिकली आप देखेंगे कोई मुझे कोई बेहतरी बायलैटरल रिलेशन में बेहतरी नजर नहीं आएगी।
पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर, कल जो मुलाकात कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी से हुई उसका विश्लेषण कर रही थी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। विजय रूपाणी आज गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी शासित 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने में तो कामयाब रही है, मगर उसे पिछले चुनाव के मुकाबले सीटों का नुकसान हुआ है। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार गुजरात में रूपाणी की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने बात की गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट से और पूछा कि क्या वजह रही कि बीजेपी ने रूपाणी पर ही भरोसा किया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड की ये सोच थी कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 49.1% वोट मिले हैं, जो पिछले चुनाव के कंपैरिजन में करीब 1.25% ज्यादा है। नंबर वन। नंबर टू, चुनाव के पहले अमित भाई शाह जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि ये चुनाव हम विजय रूपाणी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तीसरा फैक्टर ये था कि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज कतई नहीं देना चाहती थी कि विजय रूपाणी को हटा के नेतृत्व परिवर्तन करके गुजरात के चुनाव में उनको झटका लगा है, ये मैसेज गुजरात के मतदाताओं में जाए। क्योंकि चौथा फैक्टर उसके साथ जो जुड़ा हुआ था वो ये था कि अगर विजय रूपाणी को हटाकर अगर ज्ञातिवाद के समीकरण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चली जाती और मान लो पाटीदार कम्युनिटी के किसी प्रत्याशी को अगर उन्होंने सीएम बना दिया होता तो बिन पाटीदार समाज जो है वो नाराज हो सकता था। अगर ओबीसी को बना देते तो दलित और पाटीदार समाज जो है वो नाराज हो सकता था। इसलिए उनके लिए लाजमी यही था कि 2019 के लोकसभा के चुनाव तक उसमें कोई परिवर्तन न करे।
क्या जो उप मुख्यमंत्री है उनको बनाए रखा गया, क्या इसके पीछे ये भी है कि आप जो पटेलों की नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश की जाए?
जी बिल्कुल, क्योंकि जब आनंदी बहन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी जो जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनको जब लाया गया था तो पटेल समाज नाराज न हो इसके लिए नितिन भाई पटेल को डेप्यूटी बनाया गया था। और उसके बाद आज भी वो सोच बरकरार रही है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अगर नितिन भाई पटेल को हटाते तो ये सिग्नल चला जाता कि पाटीदार कम्युनिटी से भाजपा ने अपना मुंह मोड़ लिया है।
लेकिन क्या नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाए रखने से क्या मुख्यमंत्री की और बीजेपी की जो कोशिश है कि भाई पटेलों को हम फिर से साधें, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी सिर्फ इतना करने से?
देखिए, पाटीदार समाज जो विमुख हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, उसकी वजह से भाजपा को इस चुनाव में 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहां एक भी सीट नहीं मिली है, करीब 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक सीट मिली है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय पे गए थे तब उन्होंने यही कहा था कि समाज का जो तबका हमसे नाराज है उसको मनाने के लिए कोशिश की जाए। यहाँ पर 6 बड़े बड़े पाटीदार कम्युनिटी के लीडर्स हैं और उन सबको भी इस शपथ विधि समारोह में इसलिए जोड़ा गया है ताकि एक मैसेज दिया जाए कि पाटीदार समाज को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखना चाहती है।
इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में विजय रूपाणी को राज्यसभा के रास्ते केंद्र में लाया जाए। ऐसा होता है तो फिर कौन चेहरा होगा गुजरात में?
गुजरात से अगले मार्च और मई के बीच में जो चुनाव होने वाला है उसमें अरुण जेटली, उसके बाद केंद्रीय मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला और दूसरे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, ये तीन लोग जो हैं वो गुजरात से चुन के गए हैं और ये तीनों की सीट खाली हो सकती है। ये संभावना चल रही है कि मनसुख भाई मांडविया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी विश्वासु माने जाते हैं और साथ में ही सौराष्ट्र की जो लेउआ पटेल कम्युनिटी है जो काफी पावरफुल है और भाजपा से विमुख हो गई है, या तो उनको लाया जा सकता है या फिर पुरुषोत्तम रूपाला जो उनकी छवि काफी स्वच्छ है और बहुत अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, इन दोनों में से किसी को पसंद किया जा सकता है।
विजय रूपाणी आज गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट। राजस्थान के जालौर जिले में दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। प्रशासन ने भीड़ के साथ मंदिर में प्रवेश करने वाले विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार करके छोड़ दिया। विधायक का आरोप है कि दलितों के साथ बड़े पैमाने पर छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
मंदिर देवालयों से निनादित होती घड़ी घंटे और आरती की आवाज़ न इंसान की जात पूछती है न उसका दर्जा, लेकिन दलित कहते हैं मंदिर की देहरी पर जाते ही उन्हें दूर से दर्शन करने को कहा जाता है। राज्य के एक विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार को जालौर जिले के शंखवाली गांव की ओर कूच किया तो हुजूम उनके साथ था। वे शंखवाली के एक मंदिर में दलितों के साथ दाखिल होना चाहते थे, लेकिन वहां तनाव पैदा हो गया। प्रशासन ने डॉक्टर मीणा और उनके समर्थकों को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि प्रशासन को लगता था इससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। डॉक्टर मीणा ने बीबीसी से कहा, पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में उन्हें दलितों के साथ भेदभाव की बड़ी शिकायतें मिली है।
यहाँ तक हालत है कि मटकी के हाथ नहीं लगाने देते, शमशान में दाह संस्कार नहीं करने देते, कर देते तो राख को फेंकवा देते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। दलित दूल्हा घोड़ी पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। जब ये बात मेरे को पता लगी तो मैंने सारा वहाँ जानकारी की तो दर्जनों गांव ऐसे हैं जहाँ पर मंदिरों में प्रवेश नहीं है। नीचे जाति के लोगों को, दलितों को, मीणों को, मेघ वालों को यहाँ पर जबरदस्त दमन है, शोषण है, छुआछूत है, भेदभाव है, सामंत शाही वो है। ये चार छह जिलों में ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका उन्मूलन करना बहुत जरूरी है।
जालौर के जिला कलेक्टर BL कोठारी ने BBC से कहा, इस तरह के आरोप बेबुनियाद है। प्रशासन के मुताबिक मंदिर अभी निर्माणाधीन है और उसमें कोई मूर्ति नहीं है। दूसरी तरफ सैवर्ण समाज के लोग थे। क्षेत्र के उप प्रधान नयन सिंह राजपुरोहित उसी शंखवाली गांव के हैं। श्री राजपुरोहित कहते हैं कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि वे स्वागत के लिए तैयार थे।
वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब इनको जयपुर से आके यहाँ उर्दन करने की वे राजनीति क्या बनाना है, वो बाकी कुछ बात नहीं है। सिवाय राजनीति की कोई बात नहीं है सर, व्यवहार में है। हम तो साथ एक ही लोटे से पानी पीते हैं, साथ उठते हैं, साथ देते। हमारे तो 80% दलित और श्रमिक आपस में साथ खेती करते हैं।
विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष नरपत सिंह शेखावत कहते हैं वे एक शमशान, एक पूजा स्थल और एक पनघट की नीति पर जोर दे रहे हैं। दलित संगठन इससे सहमत नहीं है। दलित अधिकारों पर काम कर रहे डॉक्टर ML परिहार सरकार में बड़े पद पर रहे हैं, उनका गांव उसी भूभाग में है। डॉक्टर परिहार कहते हैं भेदभाव बहुत गहरा है।
राजस्थान के अंदर जो जात पात, छुआछूत और जातीय उत्पीड़न बहुत ज्यादा रहा है और वो गुजरे जमाने की बात नहीं है, आज भी है। मंदिरों के प्रवेश का जहाँ तक सवाल है, लगभग हर गांव के अंदर जो मंदिर है अलग अलग देवी देवताओं के, वो दलितों के लिए उनका प्रवेश रोक है उसपे। लेकिन क्या है कि कोई हिम्मत नहीं कर पाता इसलिए, और जब चर्चा में नहीं आता, नहीं तो आए दिन जो भी मंदिर होते वो दलित मंदिरों में जाते नहीं है, सिर्फ उनके जो मोहल्ले का खुद जो उन्होंने मंदिर बनाया होता है वहीं तक वो सीमित।
रामानुज कह गए हैं भक्ति सबका अधिकार है। कबीर कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। लेकिन दलित कहते हैं जब भी वे पूजा की मुराद लेकर किसी मंदिर को जाते हैं उन्हें उनकी जाति याद दिलाई जाती है। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
BBC से वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए
ये नूर कैसा है, राख का सा रंग पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने,
मीना कुमारी का सफर, रेहान फजल की जुबान, मोहनलाल शर्मा बताएंगे 2017 में किस तरह उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध के बादल मंडराते रहे।
मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर रहा हूँ,
क्योंकि पार्टी ने पहले ही निर्णय कर लिया है। प्रस्ताव करूंगा तो वही करूंगा जो पार्टी का निर्णय है।
हिमालयन मिस्टेक हुआ है।
भारत के वो राजनेता जो पार्टी के शिखर पर पहुंचकर भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। और भी बहुत कुछ BBC वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए।
और ये कार्यक्रम रोज दिन भर कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। तीन तलाक पर केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक पर पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सवाल उठाए थे और अब दारुल उलूम निसवान के संस्थापक जकिया सुमन ने कहा है कि इस विधेयक में कुछ सुधार किए जाने चाहिए। उनसे बात की हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने और पूछा कि जिस कानून को लाने के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, कोशिश कर रही थी, उसके मसौदे की किन बातों से आप असंतुष्ट हैं?
जो कानून लाने की कोशिश है ये बहुत अच्छी बात है और इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बिल में काफी सुधार की जरूरत है। तलाक की जो प्रोसीजर होगी वो प्रोसीजर ले डाउन करना बहुत जरूरी है, और वो जो प्रोसीजर है जिसको मुसलमान लोग तलाक के एहसान प्रोसीजर कहते हैं, जहाँ पे कम से कम 90 दिनों तक बातचीत के द्वारा चीजों को सुलझाने की कोशिश होती है, और अगर नहीं बात बनती है तो उसके अंत पे तलाक होता है, और उस वक्त पत्नी के लिए घर, उसके लिए कुछ मतलब वित्तीय कुछ सहाय, उसके बच्चों के लिए उनके लालन पालन के लिए कुछ मदद, ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और हमारा मकसद कैसे एक सही तरीके से तलाक की प्रोसीजर हो जहाँ पे जो रातों रात पत्नी को घर से निकाल देने की, तलाक दे देने की जो बात है, वो सिलसिला खत्म होना जरूरी है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये जो विधेयक है ये तो कई परिवारों को तोड़ देगा और ये असंवैधानिक है, क्या आप भी इनकी बात से सहमत हैं?
देखिए, हमारे यहाँ जो महिलाओं के लागू होने वाले जो अलग अन्य कानून है, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो बाइगैमी का जो कानून है, मतलब एक पत्नी के होते हुए अगर पति दूसरी पत्नी करता है तो वो 494 उसमें आईपीसी 494 लागू होता है। 494 में 7 साल तक की सजा है, लेकिन वो नॉन कॉग्नाइजेबल और नॉन वेलेबल नहीं है। जब बाइगैमी में और जो दूसरे कानून है, इवन डाउरी का कानून है या घरेलू हिंसा का कानून है, तो वहां पे जिस तरह की सजाओं का प्रावधान है वो पूरा सिविल फ्रेमवर्क में है, तो इस कानून को भी उसी फ्रेमवर्क में रखना पड़ेगा। पैरिटी जरूरी है, और जो संविधान के जो प्रावधान है उसकी स्क्रूटिनी में भी तभी ये कानून खरा उतरेगा।
इस तरह की बात भी हो सकती है कि जब कानून नहीं था तब आपने कानून बनाने की मांग की, लेकिन जब अब कानून लाया जा रहा है तो उसमें भी आपको आपत्ति है?
कानून लाना तो बिल्कुल ही जरूरी है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, कानून लाना तो जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें जो जेंडर जस्टिस का पूरा मकसद है वो आगे बढ़े, वो मात्र मतलब सिर्फ सजा पे फोकस होने से वो जेंडर जस्टिस नहीं होगा।
एक आखिरी सवाल, एज इट इज अगर ये पारित हो जाता है और कानून बन जाता है तो फिर आगे आपका क्या कदम रहेगा?
नहीं तो फिर हमें जो, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसमें सिर्फ तीन तलाक की बात नहीं थी, उसमें तीन तलाक की भी याचिका थी, हलाला के खिलाफ भी याचिका थी, और पॉलीगैमी, ये तीनों चीजों के खिलाफ थी। तो एज इट इज हलाला और पॉलीगैमी तो बच रहे हैं इस कानून में। हम तो सरकार को चाहते हैं कि कानून में शादी की उम्र भी तय हो, कानून में बच्चों की जो गार्डियनशिप और कस्टडी है वो भी तय हो, और हलाला को अवैध करार दिया जाए, पॉलीगैमी को भी अवैध करार दिया जाए। तो ये कई सारे जो पहलू हैं वो तो बाकी ही हैं, तो उसके लिए तो हमें मतलब अभी बहुत सारा कैंपेन करना ही पड़ेगा, सरकार के साथ भी हमको मतलब बातचीत करनी पड़ेगी, तो हम तो वो बातचीत जारी रखेंगे।
जकिया सुमन से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर। और अब अखबार का जिक्र करते हैं, क्या कह रहे हैं संदीप आज अखबार?
जी मोहनलाल जी, आज के लगभग सारे अखबारों में दो तस्वीरें सामान्य रूप से दिख रही हैं। पहला ये है कुलभूषण जाधव के साथ जो उनके परिजनों की मुलाकात हुई है उसकी एक आइकॉनिक तस्वीर है जिसको विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के ने जारी किया है। लगभग सारे अखबारों में वो तस्वीर है
जिसमें शीशे
के इस तरफ जाधव हैं और दूसरी तरफ
उनकी माँ और पत्नी
हैं। दूसरी तस्वीर जो अखबारों में है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में मैजेंटा लाइन का उद्घाटन किया है और उसमें वो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।
और इसी में उन्होंने कहा है कि जो उनके कपड़ों पर न जाएं, योगी के कपड़ों पर न जाएं, जो भगवा कपड़े क्यों पहनते हैं उसका क्या थॉट है वो भी उन्होंने बताया।
जी,
एक खबर जो मैं देख रहा हूं कि ये एक बयान है दैनिक भास्कर में, और ये लोकतंत्र में आस्था ना हो तो नक्सली बन जाएं डॉक्टर्स, और ये जो विवादास्पद बयान है ये हंसराज अहीर ने कल दिया है जिसमें उन्होंने डॉक्टरों को नक्सली बनने की सलाह दी है।
जी, ये नागपुर में एक जेनरिक मेडिसिन का काउंटर की ओपनिंग थी, उसमें इन्होंने भाषण दिया। एक और खबर है जिसमें इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है और निकट भविष्य में ऐसा ही किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप राय। और अब एक विशेष रिपोर्ट। अगर कोई विदेश में रह रहा हो और उसे किसी अपराध में फांसी या उम्र कैद की सजा हो जाए तो उसे बचाने वाला आमतौर पर कोई नहीं होता, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में एक ऐसा भारतीय है जो कि अपराधियों को बचाने का काम करता है। आमतौर पर लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे आते हैं, मगर यहाँ ये अपराधियों को बचाते हैं। सुनिए यूएई से जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
मिलिए पंजाब के व्यापारी एसपी सिंह ओबराय से। इनका मिशन है फांसी की सजा काटने वालों को इमारात की जेलों से रिहा करवाना। ब्लड मनी का प्रावधान इमारात के शरिया कानून में है, जैसा कि ओबराय खुद बताते हैं।
कानून में जैसे शरीयत लॉ में है कि अगर हम विक्टिम और एक्सक्यूज फैमिली दोनों को हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, और यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ने एक पैसा फिक्स किया हुआ है। जैसे किसी आदमी का मर्डर होता है तो उसका इन्होंने 2 लाख दराम जो फिक्स किया हुआ है ब्लड मनी, लेडी का होता है तो उसका 1 लाख दराम फिक्स किया हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो अगर इन बिटवीन अगर हम बातचीत कर लेते हैं, मान जाते हैं ठीक है, नहीं मानते तो कई बार क्या होता है कि जितना पैसा वो मांगते हैं उतना देना पड़ता है।
ओबराय अपनी जेब से अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं।
हर केस में 1-2 करोड़ तो लग ही जाते हैं। तो एक जो बड़ा केस था उसमें पैसा ज़्यादा लगा था, उसमें हमारा जो 17 बॉयज़ थे जो जिनकी फांसी माफ़ कराई थी, तो उस एक केस में मेरा कोई 7.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ उसमें लगा था मेरा।
वो अब तक 93 ऐसे अपराधियों को जेलों से रिहा करवा चुके हैं जिनके खिलाफ या तो मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी।
टोटल अभी तक जो मेरे पास 23 केस हैं जिसमें 129 लोग ऐसे हैं जो जिनको ये सज़ा हुई है, फांसी की सज़ा हुई है, कुछ लोग ऐसे जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। तो इसमें से तकरीबन 18 केस जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, उसमें 93 जो बच्चे ऐसे हैं तो उनको फांसी भी माफ़ होगी। और ये सब लोग जो हैं वो कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हैदराबाद से 3 बच्चे थे, एक श्रीलंकन है, नेपाली है, 5 लोग बांग्लादेश के हैं और 13 लोग हमारे ये पाकिस्तान के हैं।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ये नेक काम क्यों करते हैं, अपने पैसे क्यों लगाते हैं इसमें?
मैं सबको एक इंसानियत के तौर के ऊपर मैं काम करता हूँ कि मेरे को लगता है कि ये सब इंसान है। तो ये मैं कभी नहीं सोचा आज तक कि अगर मैं पैसा दे रहा हूँ या मैं पाकिस्तानी को बचाने के लिए दे रहा हूँ, या नेपाली को बचाने के लिए दे रहा हूँ, या मैं पंजाबी को बचाने के लिए दे रहा हूँ। सो मेरे लिए ये सब कोई ये जात पात का कोई चक्कर नहीं है। सो मैं एक इंसान को बचाता हूँ।
ओबराय ये साफ करना चाहते हैं कि वो अपराधियों की मदद नहीं करते।
मैं ऐसे केस लेता ही नहीं हूँ, जैसे कि ड्रग्स के केस हो गए, मैं कभी कोई केस ड्रग्स का नहीं लिया। उसके बाद ऐसे जैसे कि रेप के केसेस हैं, सो ऐसे केस मैं लेता नहीं हूँ। डायरेक्ट मर्डर है, मेरे को पता कि किसी आदमी ने जानबूझकर इसको मार दिया, तो उसका केस मैं कभी नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये ग्रुप फाइटिंग के केस है उसी केस को लेता हूँ।
ज़रा सोचिए, किसी के बेटे की हत्या हो गई हो और उसे आप पैसे दे रहे हैं। पीड़ितों के परिवारों से इस तरह का सौदा करना काफ़ी कठिन काम हो सकता है। कई ऐसे परिवारों से मिलने के बाद ओबराय को भी यही तजुर्बा हुआ।
जिसका बेटा गया होता है तो वो सीधा क्वेश्चन करेगा, हम ये तो बोल नहीं सकते कि आपका बेटा मर गया, ये लो पैसा ले लो। इसमें टाइम लग जाता है, कई बार जाना पड़ता है। अभी यूपी का केस था जो अभी ये इसी अक्टूबर मंथ में किया है, 2 साल से हम जा रहे थे उनके पास उनको कन्विंस करने के लिए। फिर करते करते फिर उनके रिश्तेदारी में उनके जान पहचान के लोगों को साथ किया जाता है कि उनको जाके कन्विंस करो कि देखो आपको इतना पैसा मिल जाएगा।
एसपी सिंह ओबराय को इमारात के लगभग सभी जज जानते हैं क्योंकि वो अदालत में जाकर खुद जिरह करते हैं। किसी वकील को उन्होंने अपने साथ नहीं रखा। रियल स्टेट और मशीनों के पुर्जों के व्यापारी ओबराय आज करोड़पति हैं, लेकिन उनका करियर एक मामूली मजदूर की हैसियत से शुरू हुआ था।
लेबर से मैं निकल नहीं पाया अपने आप को, जो मैंने मजदूरी की थी उसमें से नहीं निकल पाया। आज भी जब मैं जाता हूँ, वर्कशॉप में जाता हूँ, जब अपने स्टाफ को देखता हूँ तो मेरे को अपनी पुरानी याद आ जाती है।
वो दुबई को अपना घर जरूर मानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बुर्ज खलीफा में उनके 2 फ्लैट्स भी हैं, कई प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनका परिवार और उनका दिल पंजाब में रहता है। जुबैर अहमद, BBC दुबई।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त आ गया है।
BBC समाचार। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव और उनके परिजनों से मुलाकात पर पाकिस्तान ने कहा है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं है। रूस के चुनाव आयोग ने विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने पर पाबंदी लगा दी है। क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने इसराइल और फलस्तीनी लोगों से शांतिपूर्ण द्विराष्ट्र समाधान की अपील की है। मॉस्को में एक बस के फुटपाथ पर चढ़ जाने से 4 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने किसी चरमपंथी हमले के संबंध से इनकार किया है। एप्पल ने स्वीकार किया है कि उसने पुराने आईफोन्स की क्षमता को जानबूझकर धीमा किया था। लोगों का कहना है कि कंपनी ये जानती थी कि जब फोन धीमा हो जाएगा तो लोग नए आईफोन खरीदेंगे। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था दीपक जसरोठिया ने। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में वर्षांत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।